हमारे मध्य बाबा की अनमोल कृति आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी का हम एक हाथ की साइलेंस की वेलकमिंग ताली से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय दीदी जी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं और अनेकों का भाग्य जगाने वाली भी हैं। आप बड़े दादी जी दादी प्रकाशमणि जी के बहुत अंग संग रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई आपने पढ़ी, आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और डॉक्टरी करते ही ज्ञान मिलने के साथ साथ आप ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हो गए। 74 में आपको ज्ञान मिला था, हालांकि थोड़ा बंधन भी था, इसके बावजूद भी अपनी लगन से और अथक प्रयास से बाबा के प्यार से आप सीधा हेडक्वार्टर में ही आकर के समर्पित हुए, जो बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम ग्लोबल हॉस्पिटल अभी बना ही था, तो काफी समय आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी मेडिकल की सेवाएं प्रदान की। उसके पश्चात बड़े दादी जी दादी प्रकाशमणि जी की स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में बहुत समय आप दादी जी के बहुत नजदीक एकदम अंग संग रहे हैं और आपके जीवन में वो प्रकाशमणि दादी जी के गुणों का प्रकाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। अक्सर मधुबनवासी कहा करते हैं कि एक डॉक्टर सविता बहन है जिसको कभी भी किसी ने किसी भी रूप में गुस्सा करते नहीं देखा है। नेवर एवर, कभी भी नहीं। हाँ, भले एक हाथ की ताली बजाए, ऐसे में दो की भी बजा सकते हैं। आप वुमेन विंग के नेशनल हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, उसमें भी अभी बहुत विशेष सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और चाहे पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां कोई भी ग्रुप्स आए आपकी मधुर गहन ज्ञान युक्त वाणी से उनको लाभ जरूर प्राप्त होता है। बहुत अथक सेवाधारी, सरल चित, मिलनसार और हमेशा सबके सहयोग के लिए आप सदा उपस्थित रहते हैं। आपका चेहरा ही सबको बाबा की याद दिलाता है। तो आज का विषय आपका बहुत अच्छा विषय है, जो हमारे योग का बेस है, स्वस्थिति की अनुभूति, वो आदरणीय डॉक्टर सविता देवी जी हम सबको कराएंगे। दीदी जी,
ओम शांति। आप सभी यहाँ बाबा के प्यारे घर मधुबन में, ओरिजिनल मधुबन कहेंगे इसको, आपको ये ड्रामा में भाग्यशाली चांस मिला है भट्टी करने का। और 3 दिन ये गहन अनुभव करने का, तो सभी के चेहरे, मैं समझती हूँ आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, पहला दिन है, लेकिन फिर भी सभी के चेहरे बता रहे हैं कि एक ही दिन में कितना परिवर्तन आया है। और आने वाले 2 दिनों में तो आप काफी बाप समान स्थिति का अनुभव करने वाले हैं। स्वस्थिति जब हम कहते हैं तो वो हमारी आत्मिक स्थिति है या आत्मिक गुणों का अनुभव है। और ये हमारा पहला पाठ है। जैसे ही हम ज्ञान में प्रवेश होते हैं, प्रवेशता ही आत्मा के ज्ञान से होती है, लेकिन बाबा कहता है यही अंतिम पाठ भी है, क्योंकि जितना सरल ये पाठ है उतना ही कठिन भी है। व्यवहारिक जीवन में जैसे दुनिया में लोग गीता सुनते हैं तो पहले अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान है, लेकिन सिर्फ वो किताब में ही है। जीवन में कभी उसको व्यवहार में अनुभव लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी कितना अनुभव करते हैं, सुबह योग में बैठते हैं, शाम को योग में बैठते हैं, थोड़ा आत्मा समझने की कोशिश करते हैं, वो भी पूरा समय नहीं, और सारा दिन कार्य व्यवहार में फिर कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। देह अभिमानी तो अब नहीं होते हैं, बॉडी कॉन्शियस कम होते हैं, वो भी हो जाते हैं, लेकिन कर्म कॉन्शियस हम बहुत रहते हैं और उसमें हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति समाप्त हो जाती है। अब जैसे ही हम कर्म कॉन्शियस हुए, फिर कब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं और फिर हमारे वही पुराने संस्कार। बाबा कहता है देह अभिमान विकारों की जड़ है और आत्म अभिमानी स्थिति से ही गुणों की सुगंध होती है। देही अभिमानी बहुत मीठे होते हैं, बाबा मुरली में हमें कितनी बार कहते हैं। तो यदि हमारी निरंतर आत्मिक स्थिति नहीं है तो आत्मा के गुण शांत स्वरूप स्थिति, प्रेम स्वरूप स्थिति, आनंद स्वरूप स्थिति, शक्ति स्वरूप स्थिति, पवित्रता, ये अनुभव में अंतर आ जाएगा, सदा नहीं रहेगी, कभी अनुभव होगी और कभी नहीं होगी, जैसे दुनिया में होता है। यदि हम कोशिश करते हैं सारा दिन मैं आत्मा की स्मृति में रहूं, ये आत्मा शरीर की मालिक है, कर्मेंद्रियों का मैंने आधार लिया है, तो जहां भी हम कार्य व्यवहार में हैं हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होती है और दूसरे भी हमसे वो रूहानियत का अनुभव करते हैं। आप किसी के भी संपर्क में आएंगे, जैसे कहते हैं योगी की दृष्टि ही न्यारी होती है, तो न्यारापन किस बात का है, किस बात का है, आत्मिक दृष्टि का है, क्योंकि आप दूसरे को दैहिक दृष्टि से नहीं देख रहे, स्वयं को भी आत्मा समझ रहे हैं और दूसरे को भी आत्मा देख रहे हैं। मन बुद्धि देह को टच नहीं कर रही, नजर किस पर जा रही है, मस्तक मणि पर। बाबा कहता है जैसे सांप के लिए उसके मस्तक में मणि होती है, तो जो मणि वाला सांप होता है वैल्यूज की मणि की होती है, और अगर सांप को टच किया तो विष ही मिलने वाला है, क्योंकि सांप तो काटता ही है। तो आज की इस तमो प्रधान दुनिया में हम तमो प्रधान वातावरण में रहते हैं, और यदि हमारा ये पक्का अभ्यास नहीं है आत्मा समझने का, तो वो प्रभाव हमारे पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हमारा प्रभाव उन आत्माओं पर पड़े, हमारी पवित्रता का उनको अनुभव हो, हमारा न्यारापन उनको अनुभव हो, हमारी रूहानियत उनको अनुभव हो, उसकी बजाय क्या होगा, क्या होगा, उनके विकारी संस्कारों का प्रभाव, उनके तमो प्रधान वाइब्रेशंस का प्रभाव या इम्प्यूरिटी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ सकता है, उनकी स्थिति मुझे अशांत कर सकती है यदि मैं अपने स्वस्वरूप की स्मृति में नहीं हूं। और फिर यदि हम ये एक्सक्यूज देते हैं क्या करें, हम तो दुनिया में रहते हैं ना, हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं ना, हम तो काम पर जाते हैं ना, नौकरी करते हैं, 10 लोगों से हमारा मिलना होता है, उठना बैठना होता है, तो मन अशांत हो ही जाता है। मन में कई संस्कार जागृत हो जाते हैं, तो ये तो होगा ही, होना चाहिए। क्या कहेंगे, तो कमजोरी किसकी है? देखो, शुरू शुरू में बाबा ने और हमारी दादियों ने 14 साल तपस्या की, और वो तपस्या किस बात की थी? इसी बात की थी। दादी सुनाती हैं, रतन मोहिनी दादी से कई बार रूरिहान होती है, बड़ी दादी भी थे, उनसे भी रूरिहान होती रहती थी। तो दादियां कहते थे हमारी भट्टी ही इस बात की होती थी, जैसे आपको 3 दिन अभी भट्टी का मौका मिला है, ऐसे उस समय भी प्रोग्राम आता था वतन से बाबा का, तब 7-7 दिन की भट्टी होती थी। और बोला सिर्फ हम खाने के लिए, और वो भी हमें जहां हम भट्टी करते थे वहीं बाहर ही खाने का प्रबंध होता था। सारा दिन हमें, जैसे हम एक गुफा में बैठे हैं, वैसे हम कहते हैं अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना, आत्मा समझना अर्थात अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना। तो सिर्फ एक ही संकल्प में कितने घंटों बैठ जाते थे, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, तो सारा दिन सिर्फ आनंद स्वरूप का अनुभव, वो आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, वो आनंद स्वरूप की अनुभूति क्या है, वो आनंद स्वरूप की प्राप्ति क्या है। और यदि हम आनंद स्वरूप की स्थिति में रहते हैं तो स्वयं का अनुभव, अन्य आत्माएं जो मेरे संपर्क में आएंगी उनका अनुभव क्या होगा। तो उसकी गहराई में, एक ही गुण की इतनी गहराई में जाते हैं लंबा समय तक, तब वो हमारा बनता है, जिसको कहते हैं अपनी घोट तो नशा छुड़े। अब उस गुण का अनुभव कब होगा? अब आप जब रहते हैं बाहर अपने कार्य व्यवहार में तो इतना समय तो नहीं मिलता है, योग करेंगे घंटा आधा घंटा, उससे ज्यादा तो नहीं, आधे घंटे का टाइम भी बड़ा मुश्किल से निकालते होंगे। तो फिर ये जो समय मिला है, हम अपने उन अनादि आदि गुणों की गहराई से उसको अनुभव करें। शांति की स्थिति का अनुभव है। अब मन को अशांत करने वाली बातें तो आएंगी, मन की खुशी को खत्म करने वाली बातें तो आएंगी, या मन के प्रेम को खत्म करने वाली बातें भी आएंगी। मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसके विपरीत परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं, क्योंकि हम रह ही ऐसे संसार में रहे हैं। लेकिन कमाल किस में है? शांति में शांत रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी रह लेंगे शांत, है ना। लेकिन अशांति में भी मेरी शांत स्वरूप स्थिति बनी रहे, ये अपनी चेकिंग है कि अशांति की कई बातें आ जाती हैं, घर परिवार में ही आ जाती हैं। मानो अब बहुत गर्मी का मौसम है और घर में बिजली चली गई और जो आपका इन्वर्टर है वो भी काम नहीं कर रहा है, मानो अब आप गर्मी को लेकर ही अशांत हो गए, या घर में बच्चे हैं आपको तंग कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे बच्चे, तो क्या हो गए? अशांत हो गए। आपके घर में सर्वेंट आती है रोज, बिना बताए आज नहीं आई सर्वेंट, क्या हुआ? अब ये तो रोज ही होने वाला है। तो फिर अगर हम भी दुनिया वालों जैसे, ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, दुनिया वालों जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो उनके जीवन में और मेरे जीवन में अंतर हुआ? फिर ज्ञान युक्त जीवन होने का फायदा, इसका मतलब मैंने अभी तक अपने आत्मा के गुणों को गहराई से अनुभव नहीं किया, या परिवर्तन की शक्ति मेरे में इतना तीव्र गति से काम नहीं करती, बाबा कहता है व्यर्थ को समर्थ में बदल दो या नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। कहते हैं ना हर बात में कल्याण है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, क्या करना है? कल्याण कैसे दिखेगा? जब मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला, वो पावर है मेरे अंदर परिवर्तन करने की, वो शक्ति है, तब किसी भी परिस्थिति को मैं ज्ञान की शक्ति से तुरंत परिवर्तन कर लूंगी। अशांति पैदा करने वाली स्थिति को भी ज्ञान की शक्ति से मैं बदल सकती हूँ? नहीं बदल सकती। हाँ, अब बिजली नहीं आई, मानो आज के जमाने में तो सब साधन है इंसान के पास, 50 साल पहले जाओ था कुछ, तब लोग गर्मी में नहीं रहते थे क्या? हाँ, तो पता ही था कि बिजली नहीं है। हाँ जी, तभी भी बड़े आराम से सोते थे। हाँ, तब गर्मी ही नेचुरल थी ऐसा कहेंगे। तो कहने का भाव क्या है कि जब भी कोई ऐसी स्थितियां आती हैं, तब तुरंत हम उसकी गहराई में चले जाएं और सोचें कि इस वक्त भी मुझे शांत रहना है। बाबा कहता है विनाश के समय तो क्या होने वाला है, ये तो कुछ भी नहीं है, कितनी विकराल परिस्थितियां आ जाएंगी, माया भी अपने लास्ट चांस लेगी, प्रकृति के 5 तत्व भी आपका पेपर लेने वाले हैं, और अन्य आत्माओं के जो संस्कार हैं वो संस्कार भी इमर्ज होंगे। हो सकता है जो संबंध संपर्क हैं वो संबंध संपर्क के पेपर भी उस समय अपने लास्ट स्टेज में होंगे। तो फिर ऐसे समय पर भी मेरा मन अचल अडोल एकरस रहे, और फिर यदि अचानक कुछ होता है, अचानक और एवरेडी बाबा कहता है, तो उसमें मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, अचानक मुझे शरीर छोड़ना पड़ता है, तो फिर मेरा कनेक्शन सिर्फ एक बाबा से। कोई भी बात मुझे अगर हलचल में नहीं लाती है, एक बाबा के साथ ही मेरा योग है, तब हम उस स्थिति में पास होंगे। लेकिन वो बहुत काल का अभ्यास अभी से चाहिए, वो अंत में नहीं होने वाला है, होने वाला है। तो इसीलिए बाबा हमें रोज मुरली में ये बात कहते हैं, देही अभिमानी बनो। कोई मुरली ऐसी नहीं होती जिस दिन ये पॉइंट नहीं होता कि अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। तो क्यों हमें बार बार ये करना पड़ता है? एक कहानी आती है बड़ी अच्छी कि एक बार एक राजा का बेटा था, और बचपन में ही 5 साल की उम्र में उसे महल से भेड़िया उठा के ले गया। वो बहुत छोटा था तो भेड़िया उसमें अंतर नहीं कर पाया कि वो भेड़िए का बच्चा है या इंसान का बच्चा है, तो उसने उसको अपना ही बच्चा समझ के पालना शुरू किया। तो वो बच्चा जो है वो भेड़ियों में पलने लगा। तो वो जैसा देखता था वैसा करता था। वो देखा कि भेड़िए तो 4 पैर से चलते हैं, तो उसने भी अपनी शेप वैसी ही बना ली है ना, हाथ को भी पैर बना लिए और वैसे ही भेड़ियों जैसे चलना शुरू किया। फिर आवाज भी वैसी ही निकालनी शुरू कर दी, वही सीखेगा जो वो भेड़िए आवाज निकालेंगे सीख। धीरे धीरे उसके शरीर पे बाल भी उगने लग गए, हाँ, क्योंकि जैसी मन की स्थिति होती है उसका असर आया, तो हाँ, पूरा भेड़िए जैसा शेप बन गया, एक्सेप्ट मुंह मनुष्य का था उसका। अब कुछ साल के बाद ये राजा शिकार खेलने के लिए जाता है और देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड है जंगल में, पर उसे एक भेड़िया थोड़ा अलग सा लगा, डाउट हुआ उसे कि ये कैसा भेड़िया है। तो उसने पीछा किया वो भेड़िए के झुंड का, तो सारे भेड़िए तो भाग गए क्योंकि वो तो तेज भाग सकते हैं, लेकिन ये तो इंसान का बच्चा था तो वो इतना तेज नहीं भाग पाया, तो वो पीछे रह गया और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तो देखा कि ये तो सचमुच भेड़िया नहीं है, क्योंकि उस चेहरे से पता चल गया कि ये तो कोई मनुष्य है। फिर उसे ले आए महल में, महल में ला करके उसके सारे बाल बाल साफ किए गए, तो राजकुमार की कुछ निशानी थी, तो देखा कि वो निशानी है उसमें और ये तो वही है बचपन में जिसे भेड़िया उठाकर ले गया था। लेकिन अब वो राजकुमार नहीं है, अब तो वो इंसान भी नहीं है, राजकुमार तो छोड़ो अब तो वो भेड़िया बन चुका है। अब राजा ने सोचा क्या किया जाए, कह भी नहीं सकते कि वो राजकुमार मिल गया ऐसी हालत में, तो उसने सोचा कि इसके लिए एक टीचर लगा देते हैं, और ये है बहुत असंभव जैसा ही कार्य कि कोई इसको इंसान बना दे, लेकिन फिर भी अगर बड़ा पुरस्कार घोषित किया जाएगा तो हो सकता है कि कोई हिम्मत कर ले। तो ऐसे ही राजा ने घोषणा की, तो एक टीचर आया, उसने कहा कि महाराज मैं कोशिश करता हूं। तो उसने उसको पढ़ाना शुरू किया। अब बुद्धि तो इंसान की थी, भले ही आकार प्रकार सारा भेड़िए का हो गया था, तो उसने उसको रोज सिखाना शुरू किया, मनुष्य क्या होता है, मनुष्य कैसे चलता है, मनुष्य कैसे बोलता है। कुछ नहीं, कुछ महीनों तक कोई असर नहीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और कोशिश करता रहा। तो एक साल के अंदर अब वो भी दूसरों को देखता था, दूसरे मनुष्य कैसे चलते हैं कैसे बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा, और फिर फिजियोथेरेपी भी करना पड़ा क्योंकि बॉडी की जो हड्डियां हैं वो उसी तरह से मुड़ गई थी, तो थोड़ा थोड़ा वो सीधा होने लगा। और कुछ साल लगे उसको पूरा सीधा करने में, कि वो सीधा मनुष्य की तरह खड़ा हो, मनुष्य की तरह बात करे। तो ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि मनुष्य बनाने से काम नहीं चलेगा, ये तो राजकुमार है, इसको राजकुमार के लक्षण भी सिखाने हैं, राजकुमार जैसा प्रशिक्षण भी इसको देना है। फिर उसने वो प्रशिक्षण देना उसको शुरू किया। तो ऐसा नहीं कि वो राजकुमार नहीं था, ऐसा भी नहीं कि वो मनुष्य नहीं था, लेकिन क्या हुआ, वो भटक गया। जब वो खो गया तो फिर वो अपने जो ओरिजिनल गुण है वो गुण भूल गया, विस्मृत हो गया, और उसके कारण जिस संग में वो था वही प्रभाव उसके ऊपर पूरी तरह से था। हम आत्माओं के साथ भी ऐसा ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम आत्मा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो अनादि गुण है वो हमारे निजी गुण नहीं है, लेकिन इस संसार में लंबे समय तक शरीर के साथ रहने के कारण, शरीर के संग में रहने के कारण वो प्रभाव आत्मा पर इतना गहरा पड़ गया कि अब बाबा ने आकर के हमें स्मृति दिलाई है तो भी हमें याद नहीं रहता है। कितनी ट्रेनिंग चाहिए उस इंसान को, ही इंसान बनाने में कितनी मेहनत लग रही थी, जो रियल इंसान तो था। तो हम भी आत्मा हैं, हमें वापस अपने आत्मिक स्वरूप में लाने में बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसी को याद रहता है पूरा दिन, 8 घंटा तो चलो सो जाते हैं, लेकिन 16 घंटे जागृत अवस्था में मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं, याद रहता है, नहीं रहता है ना। और इसीलिए हमारे यहाँ हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल बजना शुरू हुआ, ये दादी प्रकाशमणि जी ने शुरू करवाया था। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने कहा हर घंटे कम से कम 5 मिनट भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलो 5 मिनट ना सही, 1 मिनट ही सही, तो जो 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल बजता था उसकी बजाय हर घंटे अब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल का गीत हम सुनते हैं तो शरीर से जरूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मन से खड़े नहीं हो पाते। मन से अशरीरी स्थिति में चले जाएं, वही आत्मिक गुणों के अनुभव में चले जाएं, 1 सेकंड में मन को जहां लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर हमारा अव्यक्त स्थिति का अभ्यास पक्का है, निराकारी स्थिति का अभ्यास पक्का है, बिंदु स्थिति का अभ्यास पक्का है, तो ही हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ये फुल स्टॉप की स्टेज है, और नहीं तो हम चाहेंगे परम धाम में बिंदु रूप स्थिति में स्थित होना, लेकिन ऊपर जाएंगे और फिर तुरंत नीचे आ जाएंगे, टिक नहीं सकेंगे वहां पर। समझो हम सोचते हैं 10 मिनट में योग में बिल्कुल परम धाम में बाबा के साथ बैठी हूं और बाबा के साथ उस पावरफुल स्थिति का अनुभव कर रही हूं। अनुभव होता है 10 मिनट पूरा, 10 मिनट तो मैंने बहुत कम बोला है, लेकिन जितना समय बैठना चाहे बाबा के साथ बिल्कुल हिले नहीं। उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। मन में जो संकल्प हमें जिस समय करना है, जो स्थिति बनानी है, वो मेरा मन उस स्थिति में स्थित हो जाए। कितनी कंट्रोलिंग पावर आई है हमारे अंदर, और इतनी कंट्रोलिंग पावर तब होगी जब आत्मिक स्थिति का अभ्यास निरंतर होगा। नहीं तो मन व्यर्थ संकल्पों में जाता है। आप योग में बैठते हैं अव्यक्त स्थिति बनने की बजाय, अब सारा दिन कुछ तो हुआ ही है, किसी ने कुछ तो कहा ही है, कुछ तो ऊपर नीचे होता ही है, कोई ना कोई समस्या तो होती ही है। तो सबसे पहले चिंतन कहाँ जाता है, क्योंकि मन को फुर्सत मिल गई। सारा दिन तो आप बिजी थे, काम में लगे हुए थे, तो मन को सोचने की फुर्सत नहीं थी। योग में बैठे तो फुर्सत मिल गई मन को, तो सबसे पहले वो वही काम करता है जो नहीं करना है। फिर सोचते हैं अभी तो हम योग में बैठे हैं, बाबा को याद करना चाहिए, लाते हैं मन को। फिर पता नहीं कब फिर मन खिसक जाता है, क्योंकि जहां उसका इंटरेस्ट है वहां मन ज्यादा जाएगा। अगर उसको अभी तक परमात्म सुखों का रस नहीं मिला है, आत्मिक सुखों का रस अनुभव नहीं हुआ है, जिसे हम अतींद्रिय सुख कहते हैं, तो फिर कौन से रस में मन जाएगा? दुनिया के रसों में, जिसे हम इंद्रिय रस कहते हैं। तो फिर मन को उस स्थिति में स्थित करना हमारे लिए बहुत 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 मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए बिंदु रूप स्थिति को लोग मुश्किल समझते हैं। बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाएं, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बिंदु रूप स्थिति विकर्म विनाश करने की स्थिति है। अगर आप परम धाम में, ये परम धाम में ही, यहां नहीं कि मैं शरीर में अपने को आत्मा समझूं और बाबा को याद कर रही हूं और बाबा की जो शक्तियां हैं वो मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, फोकस हो रही हैं, वो नहीं, उसे हम आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं, बिंदु रूप स्थिति नहीं। लेकिन बिंदु रूप स्थिति तब जब मैं परम धाम में बाबा के साथ हूं और सर्वशक्ति संपन्न, जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा मस्त सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा पर हैं, तो वो योग अग्नि हो जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी योग की स्थिति कहते हैं। जैसे मानो हम एग्जाम्पल देते हैं ना, कागज चलता कब है? जब सूरज की किरणें लेंस से फोकस होती हैं कागज के ऊपर। अगर फोकस नहीं होंगी तो कागज नहीं चलेगा, कितने भी सालों महीनों तक कागज पड़ा रहे, कुछ नहीं होने वाला। तो हम भी योग करते रहते हैं, सालों से योग कर रहे हैं, कितने सालों से हम बाबा के बच्चे ज्ञान में हैं, लेकिन फिर भी हमारे विकर्म विनाश नहीं हुए अभी तक। 63 जन्मों के जो विकर्म विनाश है, वो उसकी निशानी क्या है? आत्मा कोई ना कोई बोझ का अनुभव करती है, कोई ना कोई कर्म भोग उसके सामने आता रहता है, या हमारे संस्कार नहीं बदलते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी संस्कार वहीं के वहीं हैं। तो इसका मतलब अभी तक हमने योग अग्नि से अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं लाया है, अपने विकर्मों को विनाश हमने नहीं किया है। तो कई नए भाई बहने पुरानों को देखते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि ये बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं, पर किसको फॉलो करना है? अगर वो अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाए तो क्या होने वाला है? हाँ, फिर हम भी वहीं रुक जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ भी। तो हमें हमेशा बाबा को देखना है, फॉलो फादर करना है इस मामले में। तो जैसे योग अग्नि है माना, जैसे अग्नि में आपने कोई चीज डाली वो उस रूप में कभी वापस नहीं आई। हमने अगर कठोर चीज डाली है आग में, आपने सोना डाल दिया या लोहा डाल दिया, तो क्या होने वाला है? वो लोहा पिघल जाएगा, वो कठोर सॉफ्ट हो जाएगा, है ना, उसकी सारी अशुद्धि निकल जाती है। और अगर आपने सॉफ्ट चीज डाल दी अग्नि में तो वो हार्ड हो जाती है। अगर आपने मिट्टी है, अब समझो हमने आटा गूंधा है, मानो आटा सॉफ्ट होता है, हमने रोटी बनाई तो वो हार्ड हो जाती है थोड़ी, है ना, मतलब आटे जैसी सॉफ्ट तो नहीं रहती है। ऐसे ही मिट्टी की ईंट बनाते हैं, मिट्टी तो सॉफ्ट होती है, पकाते हैं तो वो पक्की ईंट बन जाती है। तो किसी भी चीज को जब हम आग में डालते हैं तो उसका रूप जरूर बदलेगा, उस रूप में वो कभी आपको वापस मिलने वाली नहीं है। तो बाबा हमें क्यों ज्वालामुखी योग कहते हैं, उसका कारण यही है कि जब हम ज्वालामुखी योग करेंगे तो ही आत्मा का पुराने संस्कारों वाला रूप परिवर्तन होगा, वो भस्म हो जाएंगे, पुराने संस्कार अग्नि में भस्म हो जाएंगे। और नहीं तो क्या होता है, दब जाते हैं, थोड़े समय के लिए दब जाते हैं, और जैसे ही उसको मिलता है परिस्थितियों का पानी जिसको कहते हैं, तो वो पानी मिलने से फिर से वो संस्कारों की शाखाएं उपशाखाएं मर्ज हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं इतनी मेहनत की थी इस संस्कार पर, वापस आ गया, खत्म नहीं हुआ अभी तक। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि जो बिंदु रूप स्थिति है हमारी, उस स्थिति में हमने उस संस्कार को भस्म नहीं किया, नहीं, ओरिजिनल रूप में हम नहीं आए। और जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, तो उनके भी अनादि आदि स्वरूप को देखते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा हम कहते हैं। अगर मैंने वर्तमान स्वरूप को देखा आत्माओं के, फर्क पड़ेगा? अनादि स्वरूप को देखा और वर्तमान स्वरूप को देखा, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने उनके वर्तमान स्वरूप को देखा तो वो तो फिर वही वर्तमान के अनुसार, किसी के कोई संस्कार हैं, किसी के कोई संस्कार हैं, हरेक में कोई ना कोई कमी मुझे नजर आने वाली है। लेकिन बाबा ने कहा है हमें गुणग्राही बनना है, किसी की कमी पर मेरी नजर जानी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं, बाबा भी हमारी कमियों को नहीं देखता है। हम बाबा के पास जब आए तब बाबा कहते हैं कोई ना कोई एक विशेषता जरूर थी हमारे अंदर जो बाबा ने हमें चुना। तो चाहे हम 35 अवगुणों वाले थे, एक गुण कोई ऐसा था जो बाबा की नजर में हम आ गए। तो हमारे भी संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है किसी के अंदर अवगुण बहुत ज्यादा हो, गुण नहीं के बराबर हो, लेकिन फिर भी मुझे क्या देखना है, वो गुण मुझे कैसे दिखाई देंगे? नहीं तो क्या होता है, सामान्य व्यवहार क्या होता है, 36 गुण होंगे पर एक अवगुण है, तो मुझे क्या दिखाई देने वाला है? वो सारे गुणों पर पानी फिर जाएगा, वो कमी मुझे नजर आती रहेगी। ये ऐसे करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसी बात को लेकर के सूक्ष्म घृणा भाव उस आत्मा के प्रति कहीं ना कहीं मन में आ जाएगा। तो मेरी प्रेम स्वरूप की स्थिति तो क्या हो गई, प्रेम रहेगा? मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, सदा ही प्रेम स्वरूप हूं या कभी कभी प्रेम स्वरूप हूं? और आजकल तो लोग कहते हैं केवल दूसरों से प्रेम नहीं करना है, अपने आप से भी प्रेम करना है। अपने आप से प्रेम करेंगे तब स्वमान में रहेंगे। बाबा ने हमें इतने अच्छे अच्छे स्वमान क्यों दिया? ऐसे नहीं बताया सिर्फ मैं आत्मा हूं, लेकिन क्या बताया, मैं कौन सी आत्मा। तो पूरा दिन हमें इन स्मृतियों में भी रहना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। तो हम अपने आप को मान देते हैं, दूसरा कोई मुझे मान दे या ना दे, दूसरा कोई मुझे प्रेम करे या ना करे। हाँ, नहीं तो इंसान की इच्छा होती है ना कि मुझे प्रेम मिलना चाहिए, और अगर आप जिनसे अपेक्षा करते हैं आपको प्रेम मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, मानो उसकी अपनी स्थिति परिस्थिति है, वो नहीं दे पाते हैं आपको प्रेम, या कईयों को ऐसा लगता है कि हमारी उपेक्षा होती है या हमारे साथ पक्षपात होता है किन्हीं बातों में, ये सब प्रेम की कमी की निशानी है। तो इसका मतलब मैं दूसरों से प्रेम चाहती हूँ, प्रेम देने की बजाय, देने हम देवता हैं या लेवता हैं, क्या बना रहा है बाबा, देवता बना रहा है ना। तो वर्तमान समय ही वो संस्कार हमारे इमर्ज होने चाहिए, तभी भविष्य में हम देवता बनने वाले। आज देवताओं की मूर्ति के सामने जाते हैं लोग, तो वो मूर्ति जो जड़ मूर्ति है वो भी शांति देती है, वो भी प्रेम का अनुभव कराती है, वो भी सुख का अनुभव कराती है, कराती कि नहीं कराती है ना। जड़ मूर्ति में भी वो गुण विद्यमान है, जो चित्रकार बनाता है उसको भी अंदाज है कि जो देवताएं होंगे वो सचमुच कैसे होंगे, उनके चेहरे कितने दिव्य होंगे, तो वो दिव्यता उसमें वो भरते हैं। तो वो हमारे वर्तमान स्वरूप की यादगार है। जब जड़ मूर्ति करा सकती है तो चेतन मूर्ति नहीं करा सकती है। तो मुझे कराना है, मुझे प्रेम देना है, कोई कैसा भी है। जैसे हमने कहा ना कि अशांति, शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, अशांति में शांत रहना ज्ञान है। सुख में सुखी रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुख की बातें आ जाए फिर भी मैं सुखी हूं तब ज्ञान है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो ऐसे ही कोई मुझसे प्रेम करे तब मैं उससे प्रेम करूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई मुझसे नफरत करे फिर भी मैं प्रेम करूं, कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब हमें मुश्किल लगता है, हंस रहे हैं, यही तो पुरुषार्थ है ना। पुरुषार्थ किस बात का है, हम सब कौन है, बाबा के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई सारी ये है, तो यही तो परिवर्तन लाना है जीवन में। और हो सकता है हम बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा कहता है ना, माया आपके ओपोजिशन में आ जाएगी। शायद जब हम दुनिया में होते हैं तो ऐसे पेपर हमारे ऊपर कम आते हैं, बाबा के बच्चे बनने के बाद, जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में, लौकिक जीवन में कितना सुखी बाबा का जीवन, कभी किसी ने कोई गाली नहीं दी, इतना सम्मान था उनका पूरे समाज के अंदर, क्योंकि वो इतने प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे। लेकिन जैसे ही बाबा के बने सब कुछ उलट गया, जिसने कभी जिंदगी में एक गाली नहीं खाई, गालियों पर गालियां, और कितने कलंक, गालियां ही नहीं ऊपर से कलंक भी लगे, लेकिन किस बात का निश्चय था, खुशी थी और नशा था कि कभी भी उस दुख का, उस अपमान का असर बाबा पर नहीं आया, और ही मुस्कुराते रहे। जैसे कोई बच्चा गलती कर रहा है दादा दादी के सामने तो क्या करेंगे, क्या समझते हैं, बच्चा है ना, नहीं जानता है, अनजान है। या कोई पागल कोई गलती करता है तो क्या होता है, उसकी फीलिंग आती है, क्या समझते हैं, और रहम आता है कि अगर इनको समझ होती तो ये ऐसा नहीं करते। तो ऐसे ही बाबा तो पिता है ना, तो रहम दिल, कभी भी वो फीलिंग की ये आत्माएं ऐसा कर रही हैं। और हम भी जब उस स्थिति में होते हैं ना, तो हमें भी आत्माओं के प्रति रहम अनुभव होता है। अगर आप सचमुच ज्ञान की स्थिति में हैं, स्मृति स्वरूप हैं, अगर आप स्मृति स्वरूप से नीचे आ गए तो आपको अपमान महसूस होगा। किसी ने आपको जरा भी कुछ कह दिया, होता तो है ना, ज्ञान में आने के बाद थोड़ी नहीं सुनना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। कोई भी यहाँ ऐसे नहीं बैठे हैं, ये पेपर तो सभी को पास करना ही पड़ता है। लेकिन जब बाबा की याद होती है, वो ज्ञान के स्मृति स्वरूप की स्थिति होती है, तो क्या लगता है, लगता है कुछ, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, कहां से आया कहां चला गया पता ही नहीं। हम अपने जीवन में भी सभी अनुभवी हैं, जैसे मैंने कहा, तो हमारी लाइफ में भी हमने ऐसा अनुभव किया कि जब हमने डिसीजन लिया कि हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो सारे हाँ, रिश्तेदार एक तरफ, ऐसे ही होता है, दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हो जाते हैं। तो सौ सौ बातें उन्होंने समझाने की कोशिश की, कितना उल्टा सीधा बोला, लेकिन बाबा की लगन तो विघ्न क्या हो जाता है। हम उस समय बाबा से मिले थे, तब बाबा पर्सनल मिलते थे, आज के जमाने में तो बाबा पर्सनल नहीं मिलते हैं, सभा में ही मिलते हैं, और वो भी मिलना अब कम कम होता जा रहा है। तो उस समय हम बाबा से मिले थे, तो बाबा ने कहा कि जहां हिम्मत है वहां कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। और विघ्न ऐसे होता है जैसे मक्खन से बाल। अब मक्खन से बाल निकालने में कितना लगता है ना? तो ऐसे ही हम अनुभव करते थे कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, हमें लगता था ये जानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं हमको क्या मिला, और मैं इनको नहीं समझा सकती, ये मेरी समझ से परे है। मतलब दृढ़ निश्चय था, हिम्मत थी, तो फिर वो कितनी भी कोशिश करते रहे लेकिन भगवान ने हमारे लिए राह निकाल ही दी। अब जैसे मैंने बताया उन्होंने मेडिकल किया हमने, तब मैं सोचती थी कि अगर मुझे जॉब करना है तो यहाँ हम जॉब करेंगे तो हो सकता है घर पर रहना पड़े, जॉब करने वालों को सेंटर पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ऐसे थोड़ा सा दुविधा वाली बात कई बार मन में आती थी। तो यहाँ बाबा को मिलने आए मधुबन में, और उसी समय ये ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग में था, किसी को पता ही नहीं था ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि हमने 89 में पास किया था और हॉस्पिटल 91 में बनकर तैयार हुआ। तो मैंने पास ही किया था, मैं इंटर्नशिप कर रही थी उस समय, तो ऐसे ही मैंने सोचा था कि डिस्पेंसरी में थोड़ा सेवा करेंगे और बाबा से भी मिलेंगे। तो उसी समय ये सब बातचीत चल रही थी हॉस्पिटल की, अभी तक जमीन फाइनल किया था उन्होंने कि इस जमीन पर हम बनाएंगे। और निवेर भाई हमको जानते थे क्योंकि हमने उदयपुर से किया, उदयपुर यहाँ नजदीक है, तो काफी कारोबार के लिए यज्ञ से उदयपुर शहर में बड़े भाई बहने आते जाते रहते थे, तो कई बार वो हमसे मिले थे वहां सेंटर पर और उन्हें पता था। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बुला करके खुद ही ऑफर किया, उन्होंने कहा कि आपका पूरा हो गया है ना मेडिकल, तो अभी देखो बाबा की हॉस्पिटल बन रही है, बाबा आपके लिए हॉस्पिटल बना रहा है, तो आपको कहीं बाहर जाके नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो हम सोच ही रहे थे कि हम क्या करेंगे, उसके पहले ही बाबा ने हमारे लिए वो स्थान भी तैयार कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं जहां चाहा है वहां रहा है, कैसे वो राह निकल जाएगी हमें भी पता नहीं होता, लेकिन संकल्प शुद्ध होना चाहिए, वो बात है। तो कहने का भाव क्या है कि जब हमारी आत्मिक स्थिति है तो वो आत्मिक गुण हमारे इमर्ज होते हैं। तो ये अभ्यास हमें चाहिए टाइम निकाल के करना पड़े, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, सुनते हैं ना ब्रह्मा बाबा ने कैसे आत्मा का अभ्यास किया, और बाद में जब संदेशी ने बाबा को बताया कि सूक्ष्म वतन में जो संपूर्ण ब्रह्मा है वो अव्यक्त ब्रह्मा जो अभी साकार ब्रह्मा है इससे अलग है, ये जो साकार ब्रह्मा है वो उसमें इतनी लाइट नहीं है जितनी ऊपर वाले ब्रह्मा बाबा में लाइट है, तो ये ब्रह्मा को उसके समान बनना है। तो जब बाबा को ये समझ में आया तो बाबा ने दिन रात लग करके, बाबा हमेशा 2 बजे उठते थे, आप सुनते मामा बाबा 2 बजे उठते थे, अभी भी 2-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ जाओ। ब्राह्मणों की नींद कितनी होनी चाहिए? 4 घंटा, आधी नींद होनी चाहिए दुनिया वालों से, तो अब आधी नींद में कैसे काम चलेगा? अगर देह अभिमान में रहेंगे तो 4 घंटे की नींद से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर सारा दिन आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो फिर आपको 4 घंटे की नींद से भी काम चल जाएगा। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि देही अभिमानी होकर के आप 10 किलोमीटर भी चलेंगे तो थकान नहीं होगी, लेकिन अगर देह समझ करके चलेंगे तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में ही थक जाएंगे। तो कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं अशरीरी होकर के यदि हम अपना कार्य करते हैं तो फिर हमें थकान नहीं होती है, हम बहुत काम कम समय में कर सकते हैं। जिसको कहते हैं योगेशु कार्य कुशलम। गीता में ये कहा गया कि जो योगी होता है वो कर्म कुशल होता है। बाबा की याद की शक्ति उसमें जुड़ते ही जो काम 2 घंटे में होना है वही काम 1 घंटे में हो जाता है। तो नींद भी हम कम करेंगे तो भी हमारा काम चलेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने 2-2 बजे उठ करके वो अपनी अव्यक्त स्थिति, जिसे फरिश्ता स्थिति का पहली बार पता चला बाबा को कि हमारी फरिश्ता स्थिति भी है, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले हैं। तो कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि स्वयं को भी डबल लाइट स्थिति में देखो और दूसरों को भी डबल लाइट स्थिति में। 3 ऑप्शन है हमारे लिए। एक ऑप्शन है निराकारी स्थिति, परम धाम वाली, और दूसरी है हमारी ये फरिश्ता स्थिति जो सूक्ष्म वतन वाली है, जिसे हम डबल लाइट या व्यक्त स्थिति भी कहते हैं, और तीसरी यहाँ ही इस शरीर में चलते फिरते उठते बैठते जो भी अपना कार्य व्यवहार करते हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझ करके अपना सारा कार्य करते। तो जिस समय जो स्थिति, जैसे कछुए के समान हम अष्ट शक्तियों की बात करते हैं ना, तो कार्य किया अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य किया, मैं आत्मा ट्रस्टी हूं, मैं आत्मा, या कहेंगे इस शरीर में मैं क्या हूं, ये शरीर में मैं पार्टधारी हूं। जैसे कहेंगे स्टेज पर एक पार्टधारी पार्ट प्ले करता है, लेकिन पार्टधारी अलग है और स्टेज अलग है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर में पार्टधारी है, आत्मा के लिए शरीर स्टेज है। तो मैं स्टेज नहीं हूं लेकिन मैं पार्टधारी हूं। तो जब चाहे हम न्यारे हो जाएं, जब हम इस न्यारी स्थिति में स्थित होकर के पार्ट प्ले करेंगे, ट्रस्टी स्थिति में स्थित होकर के पार्ट प्ले करेंगे, तो कर्मेंद्रियों से न्यारा होना आसान हो जाएगा। विस्तार को सार में लाना हमारे लिए फिर सहज होगा। और जब चाहे हम मन को दुनिया से न्यारा कर लें, न्यारा करके परम धाम में चले जाएं। परम धाम में गए माना सब विघ्न बाधाओं से ऊपर ऊंची स्थिति है। जैसे एरोप्लेन चलता है आसमान में, नीचे कितने भी पहाड़ हैं, कितनी भी नदियां हैं, कितनी भी बाधाएं हैं, उसके लिए वो कोई बाधा नहीं है क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर है। तो बाबा हमें कहता है अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, हो जाता है कितनी बार, तो मुझे कहां चले जाना है, कहां चले जाना है, सीधा ऊपर। और ऊपर गए माना से पार। जैसे अंतरिक्ष यान होता है, जब तक वो पृथ्वी के क्षेत्र में है तब तक वो गुरुत्वाकर्षण उसे खींचता रहता है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार गया अंतरिक्ष में, वो वेटलेस हो जाता है, भारहीन पूरी तरह से। तो बाबा हमें ये अभ्यास करने के लिए कहते हैं। और जो हमारी स्थिति होगी वो हमसे दूसरों को अनुभव होगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरे संपर्क में आने वाले अनुभव करें। करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, कई बाबा के बच्चे हैं बिल्कुल उनके संपर्क में आने वाले वर्णन करते हैं कि आपको मिलकर के बहुत शांति मिलती है, आपसे बात करके बहुत शांति मिलती है। कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन सदा ही ऐसा अनुभव हमारे से दूसरों को हो तब हम कहेंगे हम स्वस्थिति में हैं। सदा ही प्रेम स्वरूप का अनुभव हो, नहीं ऐसे नहीं कोई अब गुस्सा करने वाली कोई परिस्थिति नहीं है तो मैं गुस्सा क्यों करूंगी। हाँ, लेकिन गुस्सा करने वाली कोई ना कोई बात आ गई और मुझे भी अपनी शांति भूल गई कि मैं शांति का अवतार हूं या शांत स्वरूप हूं या शांति सागर की संतान हूं, और मैंने भी उतना ही उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, तो फिर तो ये नहीं चाहिए। अभी पुरुषार्थ माना सदा के लिए मेरी वो स्थिति बने, तो भले मुझे उसके लिए चेकिंग करनी पड़ेगी, मुझे अटेंशन देना पड़ेगा, मुझे अपना चार्ट रखना पड़ेगा। ऐसे ही वो स्थिति नहीं बनने वाली, तभी तो बाबा ने हमें समय दिया। वो मेरे ओरिजिनल गुण, मैं आत्मा विस्मृत हो चुकी हूं, जैसे मैंने कहानी सुनाई आपको। अब मुझे पुनः उसको स्मृति में लाना है, केवल स्मृति नहीं स्वरूप में लाना है, तो मुझे बार 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 वो अभ्यास अपने आप को देना है। तो भले ही मैं टाइम निश्चित करूं, जैसे मम्मा बाबा ने, दादियों ने अपने को इतना टाइम देकर के अपना वो स्वरूप बनाया, वही भट्टी में पकना है। भट्टी में भी चीज एकदम नहीं पक जाती है, टाइम लगता है उसको भी, है ना। तो वो समय हम अपने आप को दें और अपनी उस स्थिति को परिपक्व बनाएं। तो जितना परिपक्व बनेंगे, जैसे कोई चीज पकती है तो किनारे छोड़ देती है, कोई चीज पकाते हैं ना, पकने की निशानी क्या होती है ना, बर्तन छोड़ देती है वो, तब हमारा इस देह और देह की दुनिया से सहज किनारा होगा, उपराम वृत्ति होगी, बेहद की वैराग वृत्ति होगी, हमें बनानी नहीं पड़ेगी, स्वतः ही वो स्थिति हमारी बन जाएगी। तो ये है हमारी स्वस्थिति की अनुभूति। ठीक है, ओम शांति।
आज के दिन का पुरुषार्थ का मैं समझती हूँ पूरा चित्र स्पष्ट हो गया है सबको। जो हमारा विषय था आज आत्मानुभूति करनी है, तो दीदी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर, वो भेड़िए की कहानी बताकर, हम ही वही है, माया भेड़िए ने उठा लिया और अपने जैसा बना लिया। अब फिर से हमको उस जैसा बनना है जिसने भेजा था और जिसके पास जाना है, पर उसकी दृढ़ता पूर्वक तैयारी की कितनी सुंदर विधि बताई। तो हम आदरणीय दीदी जी का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे बीच आए, उस आत्मिक स्थिति के वाइब्रेशन हमें दिए, मार्ग प्रदर्शना दी। अभी जो योग चलना है 6:30 से 7:30, तो उसमें हम इस बात का अभी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे, अभी एक्सपेरिमेंट करना साथ साथ शुरू कर देंगे। दृढ़ता से आत्मिक गुणों में से किसी एक विशेष गुण को पकड़ करके अभी हम गहराई से उसका अनुभव करेंगे।